ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या कितना 28 पृष्ठ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तानधनान्येव तत्र का परिधि विना सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? आप ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन स्कलंकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अव्यक्ता दीनी भूतानी, जितने भी जीव हैं जन्म से पहले क्या होते हैं? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब अप्रकट, अदृश्य है। व्यक्त मध्यान्ह भारत और मध्य में ही प्रकट होते हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, ये शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं। अव्यक्त निधनान्य और निधन के बाद भी अप्रकट होते हैं, है ना, अप्रकट ही होते हैं। तत्र का परिदेवना, इस विषय में फिर शोक क्यों किया जा रहा है? तो भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर के रूप में हमने जो संबंध जोड़ा है जीवों के साथ में, तो वो तो बीच में शरीर है, शरीर तो बीच में रहता है और शरीर के जन्म से पहले आप नहीं जानते उनको, आप उनको देखते नहीं, जानते नहीं कुछ भी, आपका कुछ भी परिचय नहीं किसी से जन्म से पहले। जब शरीर नहीं था तो आप किसी को नहीं जानते। उसी प्रकार से इस शरीर के नाश होने के बाद भी वो अव्यक्त हो जाएंगे, यानी आप नहीं जान पाएंगे कि वो कहाँ गए। अपने कर्म के अनुसार जीव जो है अलग अलग स्थानों में चला जाता है, तो आप नहीं जानते उनको। अभी जो साथ में है हमारे, अभी दिखाई पड़ रहे हैं और हम कुछ जान रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हम किसी के बारे में नहीं जानते कि कौन अपने कर्म के अनुसार कहाँ जाता है ना। तो इसी प्रकार से जैसे कि रेलगाड़ी में आप बैठे हुए हैं, है ना, तो कोई 15 मिनट आपके साथ रहता है, कोई 1 घंटा आपके साथ रहता है, कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 4 घंटा, तो फिर चले जाते हैं, अपने अपने स्टेशन में उतर जाते हैं, है ना। तो एक ही डिब्बे में कई यात्री बैठे हैं, है ना, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि किसको कहाँ जाना है, है ना। और वो अपने समय पर अपने अपनी दिशा में चले जाते हैं, है ना। तो इसमें फिर क्या शोक किया जाए कि भाई ये हमसे बिछुड़ेंगे? बिछुड़ने का शोक क्यों किया जाए? क्योंकि 1 घंटा पहले भी तो हम उनसे दूर थे, हम उनको नहीं जानते थे, इसलिए भगवान कह रहे तत्र का परिदेवना, इसमें क्या शोक करने की आवश्यकता है, है ना। अब तात्पर्य में हम सुनेंगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। यह है स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है, है? यह आज का जो श्लोक है ये दोनों प्रकार के सिद्धांतों को जो है इकट्ठा करके बता रहा है कि आखिर जो भी हो शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि आत्मा मर जाती है, है? देहांत के समय आत्मा समाप्त हो जाती है तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, है? जैसे आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, है ना, तो वे जो है नहीं मानते आत्मा को, है? चेतना को मानते हैं, है? कि ये पदार्थ से पैदा होती है, आत्मा को मानते नहीं, और ये चेतना समाप्त हो जाती है मृत्यु के समय, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, सबको समाप्त हो जाता है, वो यही मानते हैं, इसमें भी वो शोक नहीं करते हैं डॉक्टर लोग। आजकल के जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वे भी आपको यही समझाते हैं कि मन में किसी प्रकार का जो है तनाव नहीं होना चाहिए इस विषय में, है? कि ये मर जाएंगे या हम मर जाएंगे, है कि नहीं? अगर आप के दिमाग में तनाव आ रहा है, है? किसी भी समय कि मैं कभी मर जाऊंगा या ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, तो जो डॉक्टर लोग हैं वो कुछ दवाई वाई खिला करके और आपके दिमाग को ठीक करते हैं कि ये शोक मत करो। यहां पर भगवान वही जो दिमाग का तनाव है वो ज्ञान के द्वारा ठीक कर रहे हैं। तो भगवद गीता भी एक औषधि है, है? दिमाग में की जो अशांति है उसको दूर करने की, और ये जो औषधि है ये स्थायी है हमेशा के लिए। कोई व्यक्ति ज्ञान को धारण कर ले तो उसको फिर मनोवैज्ञानिक के पास नहीं जाना पड़ेगा बार कभी भी, है ना। लेकिन जो जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, है? कोई व्यक्ति अगर उनके पास जाता है तो उनके इलाज से उसका दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं होता, और अगर कुछ ठीक हो जाता है तो फिर से खराब होने की संभावना होती है। लेकिन भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा अगर दिमाग ठीक हो जाए एक बार तो हमेशा के लिए वो ठीक हो जाता है। सकृत गीताम भति स्नानम संसार मलनाशनम, एक बार भी गीता के ज्ञान में अगर कोई व्यक्ति स्नान कर ले तो संसार का जो मल है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, है ना। तो भगवान यही कह रहे हैं, आज के श्लोक भगवान यही कह रहे हैं कि अगर आप ये मानते हो कि जन्म के पहले आत्मा नहीं थी, या आत्मा थी, आत्मा थी तो आप नहीं जानते आत्मा कहाँ से आई है, जन्म के पहले इनकी आत्मा कहाँ थी, कहाँ से आई, अपने कर्म के अनुसार इनकी आत्मा आई है, जहां पर इन्होंने जन्म लिया वहां पर आई, और मरने के बाद भी इनकी आत्मा कहाँ चली जाएगी हम नहीं जानते, है ना। तो उसी को ही अव्यक्त भगवान करें कि अव्यक्त है, है ना, उसको आप समझ नहीं सकते या आप किसी को समझा नहीं सकते, है? उसको आप देख नहीं सकते, है? अव्यक्त है। तो जो भी हो, भगवान ये कह रहे हैं आज के श्लोक में कि जो भी हो, है? आत्मा जो है अव्यक्त है, आप नहीं जानते। पहले तो भगवान ने खूब अच्छी तरह से बार बार ये समझा दिया कि आत्मा नष्ट नहीं होती है, है? कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, लेकिन फिर भगवान ने कुछ ऐसे भी सिद्धांत की, है? चर्चा की जिसमें लोग मानते हैं कि आत्मा नहीं होती है। फिर भगवान यही कह रहे हैं कि ठीक है, वो लोग कहते हैं आत्मा नहीं होती है क्योंकि आत्मा अदृश्य है, अव्यक्त है, दिखाई नहीं पड़ रही। तो लेकिन मुख्य बात यह है, भगवान का कहना यह है कि इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे प्रभुपाल लिख रहे हैं, आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। जो वेदांत है तो ये आस्तिक सिद्धांत है वेदों का, है? जो व्यक्ति वेदों के द्वारा नास्तिक मत की व्याख्या करता है वो बहुत अपराध करता है ना। इस कारण से जो मायावाद है, हरे कृष्ण, अभी ठीक है, हरे कृष्ण, इस प्रकार जो मायावाद है उसमें ज्यादा अपराध है, क्योंकि जो मायावादी है वो वेदों के द्वारा सिद्ध करते हैं कि ईश्वर निराकार है, है? तो वो ज्यादा अपराध है। जो शून्यवाद है बौद्धों का, है? तो उसमें भी ईश्वर को निराकार माना गया है, क्या ईश्वर नहीं है, जो भी हो, तो वो अपना मत है, उसमें वेदों से कुछ नहीं लिया गया। लेकिन जो व्यक्ति वेदों से ये मत निकाले, सिद्ध करे कि ईश्वर निराकार है या ईश्वर नहीं है, तो ज्यादा अपराध है, है? तो आजकल वेदांती बहुत से महात्मा हैं, अपने को वेदांती कहते हैं, लेकिन वेदांत से उल्टा सिद्धांत निकालते हैं। वेदांत का सिद्धांत क्या है, है? कि ईश्वर साकार है। वेदांत का सिद्धांत है कि परमेश्वर साकार है, है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये वेदांत का सिद्धांत है कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। उनका शरीर कैसा है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद उनका विग्रह है, है? उनका आदि नहीं है, वे सबके आदि है, है? तो जो वेदांती लोग हैं, जो असली वेदांती हैं, तो वे किनको नास्तिक मानते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते। जो व्यक्ति आत्मा को नहीं मानता, जीवात्मा को नहीं मानता, तो वो फिर भगवान को नहीं मान सकता, भगवान को कभी नहीं मान सकता, क्योंकि जो जीवात्मा है ये भगवान का ही एक तुच्छ अंश है। और अगर आप इस तुच्छ अंश को अगर आप नहीं समझ सकते, इसकी महिमा नहीं जाने, तो फिर आप भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान की महिमा को जानने का कोई प्रश्न नहीं है, है ना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो आज के श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं, है? कि आप जो भी मानो, लेकिन शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे, आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं, है? अब यहां पर प्रभुपाद जी दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं इस श्लोक का। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि, कि प्रारंभ में जितने प्राणी हैं वो अव्यक्त रहते हैं, तो जीवात्माओं के लिए भूतानि शब्द का प्रयोग यहां जीवात्माओं के लिए कहा गया है। लेकिन भूतानि का दूसरा भी अर्थ है, भूत का मतलब पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको भी, है ना। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक का दूसरा अर्थ भी निकाल रहे हैं कि जो भगवान कह रहे हैं कि प्रारंभ में जो पंच महाभूत है ये अव्यक्त होते हैं, सृष्टि के पहले अव्यक्त होते हैं, है ना, अव्यक्त प्रकृति, यानी प्रकृति में ये अंतर्हित होते हैं, है? प्रकृति से ही जो है सबसे पहले शब्द पैदा हुआ, और शब्द से आकाश पैदा हुआ, आकाश से स्पर्श पैदा हुआ, स्पर्श से वायु पैदा हुई, है? और वायु से फिर रूप पैदा हुआ, और रूप से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से फिर रस पैदा हुआ, और रस से फिर जल पैदा हुआ, जल से फिर गंध पैदा हुई, और गंध से फिर पृथ्वी पैदा हुई। इस प्रकार के क्रम से ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, ये क्रम है, है? तो इस श्लोक का प्रभुपाद दूसरा अर्थ ये निकाल रहे हैं कि प्रारंभ में ये पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, अव्यक्त होते हैं, ठीक है ना, अव्यक्त में होते हैं। तेरहवें अध्याय का श्लोक संख्या 6 निकालिए, अव्यक्त, जो प्रकृति के 24 तत्व हैं उनमें से एक अव्यक्त भी है, है? भगवान जो है महाभूतानि बता रहे हैं, पंच महाभूत ये प्रकृति के 24 तत्वों में से पंच महाभूत हैं, 5 तो महाभूत हैं। महाभूत मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, महा, है ना, और फिर अहंकार एक है, और एक बुद्धि है, और एक अव्यक्त है, और 10 इंद्रियां हैं और एकम यानी एक मन है, और पंचचेंद्रीय गोचरा इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय। और 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनम, रसनम यानी रसनम और घ्राणम, है ना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हस्त, पाद, वाक, उपस्थ और गुदा, 5 कर्मेंद्रियां। तो उनमें से एक अव्यक्त है, ठीक है ना। अव्यक्त का शब्दार्थ क्या लिखा है? अप्रकट। अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था। तो आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि जितने भूत हैं पंच महाभूत, ये प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं। तो यहां पर प्रारंभ का मतलब सृष्टि के प्रारंभ में, जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो पंच महाभूत अव्यक्त होते हैं। ये सब कुछ नहीं होता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कुछ भी नहीं होता, है ना। तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है, जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। इसका तीसरा अर्थ और प्रभुपाद समझा रहे हैं। पहला अर्थ तो ये भूतानि का अर्थ है, जीवात्माएं हैं। तो शरीर के पहले ये अप्रकट है और शरीर छूटने के बाद भी अप्रकट है, पहला अर्थ ये निकाला प्रभुपाद ने। दूसरा अर्थ इस श्लोक का प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि, या भूत का मतलब पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये पहले अदृश्य होते हैं, हैं? व्यक्ति मध्यान्ह भारत, और सृष्टि के समय ये दिखाई पड़ रहे हैं। और अव्यक्त निधनान्य और प्रलय के बाद, महाप्रलय के बाद फिर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका प्रलय हो जाएगा, है ना। तो भगवान इसका ये भी भगवान के कहने का ये भी मतलब है। फिर तीसरा अर्थ और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहां पर भूतानि का मतलब वस्तुएं भी है, पदार्थ भी है, है? पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, है? यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है, बहुत बड़ा महल है, है? तो पहले ये दिखाई नहीं पड़ रहा था महल, है? जब महल नहीं बना था उस समय ये महल दिखाई नहीं पड़ रहा था, और बन गया है तो दिखाई पड़ रहा है, है? और जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है, अतः अंततः परमाणु रूप में बना रहता है, है? तो अभी 10 साल बाद या 100 साल बाद या 200 साल बाद वो जो महल है वो ध्वस्त हो जाता है, है ना। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसके जो टुकड़े टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो मिल जाते हैं किसमें? मिट्टी में। वही जो बड़ा महल था 100 साल बाद या 200 साल के बाद, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वो सब मिट्टी में, धूल में मिल जाते हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ कि वो जो रूप है वो दिखाई नहीं पड़ रहा अभी, लेकिन जो पदार्थ है वो तो वहीं का वहीं है, है कि नहीं। उसके बहुत टुकड़े हो चुके हैं और धूल मिट्टी में मिल गया, लेकिन पदार्थ तो वही है। तो इसलिए तत्र का परिदेवना, इसलिए इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है, भगवान ने बताया। आगे शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं, अंतर इतना ही है, है? शक्ति का संरक्षण का सिद्धांत, शक्ति के संरक्षण का सिद्धांत का मतलब यह है कि शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा, है ना, ये कभी नष्ट नहीं होती। वो रूपांतरित हो जाती है। आगे किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं, अंतर इतना ही है तथा प्रकट होने यानी व्यक्त या अप्रकट यानी अव्यक्त होने पर सुख करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती हैं, प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट होते हैं, केवल मध्य में भी प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। आगे यदि हम भगवद गीता के वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंत्यवंत में देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य सुखता शरीरिणः, तो हमें सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र यानी परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। हाँ, तो ये समझना है, शाश्वत आत्मा की तुलना में यह आत्मा शाश्वत है, आपकी जो जीवात्मा है ये हमेशा रही है, हमेशा रही है। 100 साल पहले भी आप थे, 1000 साल पहले भी आप थे, और 1 करोड़ साल पहले भी आप थे, तो 1 करोड़ साल की भी अवधि में आपने कितने जन्म लिए हैं, कितने शरीर प्राप्त किए और छोड़े हैं आपने, आपका कोई हिसाब नहीं है। तो फिर इस जीवन में भी अगर शरीर छोड़ दें तो इसमें क्या चिंता की बात, ये भगवान करें सत्य का परिदेव। कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, है? जो जीव अपने को शरीर समझ रहा है, निहातम बुद्धि से बंधा हुआ है, तो वो अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि भगवान भी मांगे है कि भाई मेरे लिए तुम शरीर छोड़ दो मुझे प्रसन्न करने के लिए, तभी वो जीव भगवान को भी प्रसन्न करने के लिए अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई नहीं है ना। तो ये देह में आ सकती है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये बड़ी सामान्य बात बता रहे हैं कि अरे ये शरीर छूटता है तो बड़ी सामान्य बात है, आप इस भौतिक संसार में करोड़ों बार शरीर प्राप्त कर चुके और शरीर छोड़ चुके हैं, आपने करोड़ों करोड़ों बार शरीर प्राप्त किया और छोड़ा है, तो त्रिकापुर देव ना, तो इस विषय में चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अब देखो ये जो दृष्टि है ये भगवद गीता से ही हमें मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती। कौन बताएगा इस तरह की बातें, हर कोई यही बताता है भाई यही शरीर ही आपका सब कुछ है और यही जीवन ही एकमात्र जीवन है, इसके पहले का जीवन हम नहीं जानते, आगे भी क्या जीवन होगा हम नहीं जानते, बस केवल यही जिंदगी है, किसी प्रकार से अपनी इस जिंदगी में सुख भोग लो, अपनी सुरक्षा कर लो, दोबारा तो जिंदगी नहीं मिलने वाली। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि जीवन होता है, अगला जीवन भी होता है और पिछला जीवन भी था, लेकिन अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब ये नहीं कि है नहीं है, अगर कोई चीज ना दिखाई पड़े तो आप कह सकते हैं ये अदृश्य है, अगोचर है, अव्यक्त है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं है? तो जीवात्मा परम सत्य है, हमेशा था हमेशा रहेगा, और जो शोक है वो सत्य नहीं है, शोक करना ये सही नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। तो तात्पर्य हम पूरा इसका पढ़ चुके ना, अच्छा पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ा दी, कहां तक पढ़ा है? अच्छा अच्छा अतः अवस्थ परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, ये स्वप्न के समान है, स्वप्न में हम आकाश में उड़ते राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर हम देखते हैं कि ना तो हम आकाश में है ना रथ पर। कितना सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये जो जीवन है ये एक प्रकार का सपना है, लेकिन नहीं हर दृष्टि से सपना नहीं कह रहे, लेकिन एक दृष्टि से ये सपना है। कौन सी दृष्टि से सपना है? क्योंकि ये सब जो है ना चला जाता है, जो भी स्थिति हमारी होती है इस जीवन में वो सब चली जाती है, तो सपना ही है। सोचो अब बचपन की अगर आपको यादें आती हैं कभी 20 साल पहले, 10 साल पहले, 30 साल पहले, तो आप सपना ही बन चुकी हैं, क्योंकि कुछ भी तो नहीं मिलता है? सपने में अगर आपने 1000 रुपए कमा लिए हो तो भी जागने पर क्या मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार से इस जीवन में आपने जो कुछ भी प्राप्त किया हो, शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है? कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जीवन क्या हुआ? सपना है कि नहीं? सपने हर दृष्टि से हम सपना नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सपना में तो आप केवल कल्पना ही करते हैं, वास्तव में तो बिस्तर में आप पड़े हुए हैं, तो आप कल्पना ही करते हैं सपने में है? कि आप कलकत्ता चले गए हैं, कलकत्ता में आपने एक दुकान खोल ली है कि नहीं? उस दुकान में 60 नौकर काम करते हैं, बहुत बड़े आप सेठ बन गए हैं, मालिक बन गए हैं है? फिर आपने 3-4 फैक्ट्रियां भी खोल ली, एक बंबई में, एक कानपुर में, एक मद्रास में, आपकी 3-3 फैक्ट्रियां चल रही हैं, है ना? तो वो तो वास्तव में कुछ होता ही नहीं है, आप तो बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो उस दृष्टि से हम सपना नहीं कर रहे हैं। इस जीवन में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया और सब कुछ है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो सब कुछ आपको मिलता नहीं, तो इस दृष्टि से ये पूरा का पूरा जीवन भी एक सपना है। इसलिए तो ये भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति निधनान्य अव्यक्ति निधनान्य, कि मरने के बाद तो फिर अप्रकट हो जाएगा जीव, उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दृष्टि यही आप कह सकते हैं कि ना कुछ साथ लाए थे और ना कुछ साथ जाएगा, आप साथ कुछ भी नहीं लाए और ना साथ कुछ जाता है कि नहीं? लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम साथ लाते हैं और साथ ले भी जाते हैं। वो क्या चीज है जो साथ लाते हैं? अपने कर्म। और साथ क्या ले जाते हैं? अपने कर्म। इसलिए बड़ी सावधानी से कर्म करो, बड़ी सावधानी से कर्म करो है? खोटे कर्म करोगे तो दिक्कत होगी। जैसे खोटा सिक्का है ना, आप अगर खोटा सिक्का अगर आप रखे हुए हैं तो ये आपको संकट में डाल देगा। इसी प्रकार से खोटे कर्म अगर आप लेके जाएंगे तो आप दिक्कत में पड़ेंगे, असली सिक्के अगर आप लेके जाएंगे तो आपको सुविधा होगी। उसी प्रकार से भगवान का जो असली नाम है उसको ग्रहण करो इस जीवन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये असली धन है अपना, तो हमें ये लेके जाना है, साथ में लेके जाना है ना। लेकिन बाकी चीजें अव्यक्त, आपके कर्म भी अव्यक्त हो चुके हैं, मृत्यु के बाद आप अपने कौन से कर्म लेके जा रहे हैं किसी को पता नहीं। तो ये जो है रूपा जी बता रहे हैं कि स्वप्न के समान है, स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर हम देखते हैं कि ना तो हम आकाश में है न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये क्योंकि अप्रकट है आत्मा, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अदृश्य हो जाती है, इसलिए कोई व्यक्ति अगर नहीं मानता है आत्मा को है? तो इसमें हम ज्यादा उस पर जोर नहीं देते कि भाई मानो। अगर मुख्य चीज यही है कि अगर आप मानते हो आत्मा को तो भी आपको शोक करने की जरूरत नहीं है, अगर आत्मा को नहीं मानते हो तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है, है ना? तो आप सुन रहे हैं, अगर आत्मा को आप मानते हैं तो शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसका उत्तर कौन देगा? अगर आत्मा को आप मानते हैं कि आत्मा होती है तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
आत्मा कभी मरती नहीं है, तो शोक करने की जरूरत नहीं।
हाँ, आत्मा मरती नहीं कभी, उसे शो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी जो है ना तर्क दिया भगवान ने कि अगर आत्मा मान लो मर जाती है, खत्म हो जाती है, अगर मान ले तो भी शो करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप यही मानते हैं कि शरीर जब तक जिंदा है तब तक आप जिंदा रहेंगे और शरीर जब खत्म हो जाएगा तो आप भी खत्म हो जाएंगे, तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि उनका कहना यह है कि भाई इसमें कोई उपाय है नहीं, इसमें क्या करना, सोच करके इसमें हम क्यों सोचें, इसमें क्यों विचार करें, क्योंकि इस विषय का कोई उपाय नहीं है। कौन जानता है कि मरने के बाद क्या होता है, हम क्या बनेंगे मरने के बाद, है? तो इस तरह से जो है शोक करने की आवश्यकता नहीं है। किसने देखा है मरने के बाद क्या होता है ना। तो दोनों स्थितियों में शोक करने की जरूरत नहीं है। आगे प्रभुपाल लिख रहे हैं ये पूरा हो गया, अच्छा तात्पर्य पूरा हो गया है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। और देखो अगर अपना कर्तव्य समझ के करे तो उसका कैसा फल है, आसक्ति ना हो, कर्तव्य भाव से कर्म करे। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कर्तव्य भाव से कर्म करे और फल को नहीं भोगना चाहता,